भाई और बहनों, आज के इस इज्तिमा की आखिरी मजलिस होने की वजह से जो कुछ ज़रूरी हिदायत आपको दिए जाने मुनासिब और मौजू हैं, वो इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद कमालुर रहमान साहब मद्दज़िलुल आली से आप सुनेंगे। मुझे तो हुक्म की तामील में चंद मिनट कुछ सीधी सादी सी आम फहम इब्तदाई दीन की बातें अर्ज करनी हैं। हम में से हर एक के अंदर एक जज्बा पाया जाता है, एक दाइया है कि उसे राहत मिले, सुकून मिले, इज्जत मिले। कामयाबी मिले, अल्लाह की नेमत मिले। भाई हो या बहन, सबके अंदर ये जज्बा है, सबके अंदर ये दाइया है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये दाइया ना हो, जो ये चाहता हो कि उसे राहत नहीं तकलीफ मिले, इज्जत नहीं जिल्लत मिले, कामयाबी नहीं नाकामी मिले, तरक्की नहीं तनज़ुल मिले। कोई भी नहीं चाहता। तकलीफ से बचने की चाहत, राहत को पाने का दाइया हम में से हर एक के अंदर है। इज्जत के सब ख्वाहिशमंद हैं, जिल्लत से सब बचना चाहते हैं। सुरखरुई सबका मतलूब है, रुसवाई कोई भी पसंद नहीं करता, कामयाबी सबके मकासिद में दाखिल है, नाकामी कोई भी नहीं चाहता। अगर कोई मौका हाथ आता है राहत के हासिल करने का, तो यही सिलसिले में कोशा रहता है, फिक्र करता है कि मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूं और मुझे ये चीज़ मिल जाए। अगर कोई नुकसान वाला पहलू सामने आता है, तो ये कोशिश करता है कि ये नुकसान, ये तकलीफ, ये अजियत, ये रुसवाई, ये जिल्लत मुझसे दूर रहे और मैं इससे महफूज रहूं। इस पूरी तफसील को दो लफ्जों में उलमा ने बयान किया है, एक है जल्बे मनफात और दूसरे है दफ़े मजर्रत। ये अल्फाज याद रह जाएं ठीक है, नहीं याद रहे कोई फिक्र की बात नहीं। असल चीज मकसूद का हासिल हो जाना है। इस्तेलाहात याद हो जाएं बहुत अच्छा है, नहीं याद हुए कोई ऐसी हरज की बात नहीं। मकासिद में से नहीं है इस्तेलाहात, मकासिद में से नहीं है। आपको मालूम है कि दुनिया में जैसे ये दाइया है, इसकी हकीकी और वाकई और अबदी शक्लें आखिरत के अंदर हैं। राहत, इज्जत, शौकत, सुरखरुई, सरबलंदी, कामयाबी, उसके वास्ते एक जगह अल्लाह ने बना रखी है, उसका नाम है जन्नत। रुसवाई, रूसियाही, नाकामी, तकलीफ, जिल्लत, रंज, परेशानी, इनकी एक जगह बनाई है, उसका नाम है जहन्नम। वहां की इज्जत असल इज्जत है, वहां की राहत ही असल राहत है, और वहां की जो जिल्लत है वो वाकई जिल्लत है, और वहां की जो नाकामी है वो वाकई नाकामी है। यहां तो غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی آدمی عزت کو ذلت سمجھ لیتا ہے اور کبھی آدمی ذلت کو عزت سمجھ لیتا ہے. یہاں کی راحت اصلاً راحت نہیں، یہاں کی کلفت اصل میں کلفت نہیں. غلط فہمی میں رہتا ہے آدمی، شیشہ چڑھا لیا جی، اب ان سمجھ رہا ہے کہ میں فضاؤں میں اڑ رہا ہوں جی، کچھ فہمی میں مبتلا ہے، حقیقت ایسی ہے نہیں. ایک آدمی ظاہر کے اعتبار سے راحتوں والی شکلوں اور صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو راحت حاصل نہیں ہوتی یہاں دنیا میں. تو اس واسطے یہاں کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا کے نہیں رکھنا، نہ بھائیاں نہ بہنوں، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت میں. عزت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں اور وہ بھی راستہ صحیح نہیں اختیار کر رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب عزت حاصل ہو جائے کپڑوں سے، کپڑوں سے عزت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ بہترین قسم کے مخمل کی شیروانی کسی گدھے کو پہنا دو، عزت مل جائے گی؟ کپڑے سے تھوڑا ہی عزت ہے، دولت سے بھی نہیں ہے عزت. دولت رکھ کے دیکھ لیے لوگ، بہت ذلیل و خوار ہو گئے. تو طریقہ صحیح نہیں اختیار کر رہے ہیں. تو اس واسطے یہاں کی عزت و ذلت، یہاں کی کامیابی ناکامی، اس کا جو سودا سر کے اوپر سوار ہے اس کو ذرا کم کر دینا. اصل فکر جو سوار کر لینی ہے دل و دماغ پر وہ یہ ہے کہ آخرت کی ذلت سے میں بچ جاؤں اور آخرت کی عزت مجھے مل جائے، آخرت کی تکلیف سے میں بچ جاؤں اور آخرت کی راحت مجھے مل جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبح سے مسلسل اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے سمجھنے والے لوگوں کے واسطے. آج میں ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ترجمانی مختصر سی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک سیدھا سادہ سا، ایک عام سا نسخہ عنایت فرمایا جس کے ذریعے سے آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. ظاہر ہے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، اس لیے ایمان اور توحید تو ایک لازمی چیز ہے، اسے پیش نظر رکھنا. صبح سے توحید پر بہت کچھ بات سامنے آتی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو یہ کرنا کہ مسلمان آپس میں، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں سلام کا رواج عام کرنا، سلام کو رواج دینا. وہ کیسا؟ بالکل ایسا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. آپ نے کیسے بتایا؟ یوں فرمایا کہ ملاقات کرنے کے وقت میں جو کلمات زبان سے نکالنے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے، السلام علیکم. بہنیں بھی یہی بولیں گے، بھائیاں بھی یہی بولیں گے. بہنیں بہنوں کو کریں سلام اور بھائی بھائیوں کو. معلوم ہے کہ سلام کرنے پر کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں خالی اگر بولے السلام علیکم، اور اگر بول دیے وعلیکم السلام 20 ہو جاتے، ورحمت اللہ اگر بول دیے تو 20 ہو جاتے، وبرکاتہ اگر بول دیے تو 30 ہو جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتیں عورتوں کو آپس میں سلام تو کرتی ہیں مگر پتہ نہیں کیسا کرتی ہیں. بچوں کو سلام سکھاتے ہیں تو پتہ نہیں کیسا سکھاتے ہیں. دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بچے آتے ہیں، وہ سامنے جھکتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر وہ پیشانی کی طرف لے جاتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. یہ سلام کا طریقہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے. تو بچوں کو بھی عادت ڈلوانا السلام علیکم کی، عورتیں بھی کہنا آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم، مرد بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہنا السلام علیکم. یہ چھوڑ دینا، یہ ہاتھوں کے جبکے چھوڑ دینا. اسلام میں مسنون نہیں ہے، اس سے سنت نہیں ادا ہوگی، اس سے ثواب نہیں ملے گا. جس کو جانتے ہیں ان کو بھی کرو، جن کو نہیں جانتے مگر اتنا معلوم ہے کہ مسلمان ہے اس کو بھی کرو. جواب دینے والا جواب بھی دے، واجب ہے جواب کا دینا. اسے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر نیکی کم ملتی ہے، جواب دینے پر نیکی کم ملتی ہے، سلام کرنے پر نیکی زیادہ ملتی ہے. جب یہ علم نہیں رہا تو اب لوگ دوسرے سلام کریں اس کے منتظر رہتے ہیں. اب اگر یہ بات یاد رہے گی کہ سلام کرنے پر ثواب زیادہ ہے، جواب دینے پر کم ہے، تو دوسرے کے سلام کرنے کا انتظار نہیں کریں گے، یہ خود سے سلام کریں گے. یہ شکایت سے ختم ہو جائے گی کہ صاحب انہیں بہت مغرور ہو گیا ہے، سلام بھی نہیں کر رہا. ارے بھائی ان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے تم کیوں نہیں کر رہے. انہیں نہیں کر رہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے سلام کے پیشکشی کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں میں کیوں کروں سلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبر میں گرفتار ہو گئے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، ان کی شان میں کوئی فرق پڑا؟ اس واسطے یہ غلط فہمی نکال دینا، ہمارے بزرگان دین تو اس درجے اہتمام کرتے تھے اس کا کہ بہت کوشش کی لوگوں نے کہ پہلے ان کو سلام کریں، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اس کا، زندگی بھر میں کبھی موقع نہیں دیا کہ صاحب کوئی ان کو پہلے سلام کرے. اتنا اہتمام کیا کرنے والوں نے، ہم اتنا نہ کر سکیں تو کم از کم جہاں تک ہو سکے کوشش تو کریں گے بھائی سلام کریں. حضرات صحابہ تو خالی اس مقصد کے واسطے بھی نکل جاتے تھے بازار، باہر نکلے دو چار مسلمانوں سے ملاقات کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، گھر کو آ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا، باہر گئے تھے بازار سے کوئی چیز خریدے نہیں، کسی چیز کی قیمت نہیں معلوم کی، کہہ کے واسطے باہر گئے تھے، کہہ کے واسطے آ گئے. دونوں بولے کہ بھائی باہر آدمی جاتا ہے نفع کمانے، میں بھی نفع کمانے کے واسطے گیا تھا، کما لے کے آ گیا. انہیں کیا نفع کمایا؟ کسی گاہک سے بات نہیں کرے، کوئی چیز بازار سے خریدے نہیں. فرمایا کہ بھائی ایک مسلمان ملے تھے کچھ، ان کو سلام کی آ گیا. ہر مسلمان کو سلام کرنے پر کم از کم 10 نیکی ہیں، تو 3 کو خالی کہا السلام علیکم، واپس آ گئے تو 30 نیکیاں لے کے آ گئے. ان کے پاس اہمیت تھی نیکی کی، تو اس لیے سلام کو پھیلانا. دوسرا کام کیا کرنا؟ اطعم الطعام، اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی کو آپ کچھ کھلا سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کے بھوک کو مٹانے میں آپ بطور سبب کے استعمال میں آ سکتے ہیں. کوئی محتاج آپ کے پاس آ جائے، کوئی مسکین آپ کے پاس ہو، کوئی یتیم آپ کے پڑوس میں ہو، کوئی غریب کو ہم جانتے ہوں، کوشش کریں اس بات کی کہ اسے کھانا کھلا دیا کریں، بہت بڑی نیکی ہے. اطعم الطعام، اطعم الطعام میں خالی کھانا کھلانا ہی نہیں، کسی کو دیکھا کہ کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے کھلا دو، کسی کو دیکھا کوئی اور ضرورت میں گرفتار ہے تو کوشش کرو اس بات کی کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، چلو اس کی یہ ضرورت پورا کرنے میں سبب میں استعمال میں آ جاؤں. صبح میں آپ نے سنا ضرورت تو حقیقتاً صرف حق تعالیٰ ہی پوری فرماتے ہیں، باقی ہم سبب میں استعمال میں آنا. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ سبب میں کام میں آ جائے، کرتے سارا کام وہ ہیں لیکن جو بندہ ہاتھ لگا دیتا نام اس کا ہو جاتا ہے. ترازو دیکھے ہوں گے، ایک طرف 1 کلو کا بالٹ رکھ دیے، دوسری طرف 1 سیب رکھے، 2 سیب رکھے، 3 سیب رکھے، 4 سیب رکھے، 5 سیب رکھے، وہ جھکتا ہی نہیں ہوں. جی 7واں رکھتے ہی جھک جاتا. بچہ کیا سمجھتا دیکھنے میں کہ وزن پورا یہ 7ویں کا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، وزن پورا पूरों का है, सातवें का नहीं है, सिर्फ एक आखिरी सूरत में चूंकि सामने आ गया तो उसको अहमियत छोटा बच्चा देने लगता है। इसी तरीके से जरूरतें तो परवरदिगार आलम पूरी करते हैं। अब अगर आदमी सिर्फ सबब में जरा सा अपने आप को मुतहर्रिक किया और देखने में यूं महसूस हुआ कि ये जाहिर में सबब बना, जैसे सातवां सेब सबब बन रहा, और उस पर परवरदिगार आलम ये करम कर देते हैं कि ये अमल की निस्बत इसकी तरफ कर देते हैं कि इसने नंगे को कपड़ा पहना है, इसने भूखे को खाना खिलाया, इसने बीमार का इलाज कर दिया, इसने परेशान हाल की परेशानी को दूर कर दिया। हालांकि जरूरत तो वही करते हैं, जरूरत पूरी वही करते हैं, नाम अपना हो जाता है। और इस पर परवरदिगार आलम बहुत बड़ा अज्र अता फरमाते हैं। तो किसी जरूरतमंद की जरूरत में काम आ जाना कितना ऊंचा अमल है। हदीस में आता है, अल्लाह फी आउनिल अब्दि मा काना अल अब्दु फी आउनि अखी, अल्लाह बंदे की मदद में लगे रहते हैं जब तक के बंदा अल्लाह के किसी बंदे की खिदमत में लगा रहता हो। बहुत ऊंचा अमल है। अब ये खिदमत दो किस्म की, जिस्मानी जरूरतों के पूरा करने की लाइन की खिदमत, रूहानी लाइन की जरूरतों के पूरा करने की खिदमत। उसी को हमारे हजरत ने अभी अशारी जबान में, शेरी जबान में इरशाद फरमाया, दावत दीन भी दो दावत दुनिया कब तक, ये भी काम करते रहने का, ये बहुत बड़ी खिदमत है दीन की तरफ मुतवज्जह करना। तो दूसरी चीज क्या है, किसी जरूरतमंद की, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा करने के सिलसिले में अपने को बतौर सबब के इस्तेमाल में लाना। तीसरी बात इरशाद फरमाई, सिलुल अरहाम, ये जो रिश्ते नाते होते हैं, ये रिश्ते नातों को बाकी रखना, रिश्ते नाते वालों से मिलते जुलते रहना, रिश्ते नाते वालों के जो हुकूक हैं वो हुकूक अदा करते रहना, इसका नाम है सिला रहमी। बहुत ही ऊंचा अमल है, बड़ी इसकी ताकीद आई है, बड़ी इसकी फजीलत आई है, इसके न करने पर बहुत सख्त वईद आई है। रिश्ते तोड़ लेना नहीं, बच्चे बाप से बात नहीं कर रहे हैं जी, भाई भाई से बात नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों से बात नहीं कर रहे हैं। कभी किसी का दोनों का याराना था, दोस्ताना था, बेताल्लुकी हुई तो ऐसी हुई कि वो उसका मुंह देखने को तैयार नहीं है, इसका मुंह देखने को तैयार नहीं। बहुत ही बदतरीन अमल है रिश्ते नाते के हुकूक का ना अदा करना। इस सिलसिले में हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हु अजमाइन का जो जौक था, जो मिजाज था, उसे जहन में रखना। एक छोटी सी बच्ची जो यतीम हो गई थी, उसके पास पहुंचे हजरत अली, हजरत जैद, हजरत जाफर। वापस हो रहे थे तो उस बच्ची ने, ए मेरे चचा, सलाम ने इरशाद फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहा तई, मैं और यतीम की कफालत करने वाला ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं, यानी रोज कियामत जन्नत में वो एक दूसरे के ऐसे करीब रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत नसीब हो जाएगी। इतना ऊंचा अमल है। हज़रत अली ने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया, कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हजरत जैद आगे बढ़ गए, लगे कि नहीं साहब आप नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा, इसकी देखभाल मैं करूंगा, इसकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत जाफर आगे बढ़े, कहने लगे नहीं साहब ना आप ना आप जी, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लूंगा, इसकी खिदमत तो मैं करूंगा, इसकी कफालत जी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और फिर दलील भी दी और यूं इरशाद फरमाया कि एक तो ये मेरी मेरे चचा की बेटी है, और दूसरे ये है कि इसकी खाला जी मेरी बीवी है। ये दलील थी, इस बच्ची की जो खाला है वो खाला मेरी बीवी है, इसकी बिना पर मेरा रिश्ता दोहरा है, इस वास्ते ये मेरे पास रहेगी। मुकदमा पहुंचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लड़ाई हो रही है, कायम है, यतीम की खिदमत मैं करूंगा मैं करूंगा मैं। आज लड़ाई हो रही, कह में हो रही, ये अम्मा जान है, ये तुम अपने साथ में ले जाओ, हमारे पास नहीं है गुंजाइश, तुम अपने पास में ले जाओ, हमारे पास नहीं है गुंजाइश। यहाँ यतीम की खिदमत में मुकाबला चल रहा और यहाँ माँ को धक्का देने के सिलसिले में मुकाबला चल रहा। जब दीन से दूरी होती है, कुरान और सुन्नत के उलूम से दूरी होती है, आखिरत से बेफिक्री होती है, अल्लाह का खौफ निकल जाता है, नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत जिंदगी से जाती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में बच्चे के लिए माँ बाप भी बोझ बन जाते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी उसके नतीजे में सहाबाए किराम के दरमियान में झगड़ा हो रहा है इस बात पर कि इस यतीम की कफालत मैं करूंगा आप नहीं, मैं करूंगा आप नहीं, इस पर हो रहा मुकाबला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये कजिया पहुंचा तो आपने फरमाया कि इस बच्ची को हजरत जाफर को दे दो, इस वास्ते कि इनके घर में इस बच्ची की खाला भी है और खाला माँ के कायम मकाम होती है, इस वास्ते फैसला हजरत जाफर के हक में हुआ। इतना ख्याल रख रहे थे रिश्तेदारों में एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का और एक दूसरे के रिश्ते के पास लिहाज का और एक दूसरे से मुताल्लिका रिश्तों के हकूक की अदायगी का किस दर्जे लिहाज और पास मौजूद था। बहने भी सोचे कि कैसा नमूना है हमारे सामने और हमारी जिंदगी का मौजूदा हाल कैसा है। फरमाया सिलुल अरहाम, रिश्ते नाते के हुकूक अदा करो। इस बात से किसी से बात बंद है तो खुल जाना वो आज से। मुमकिन है किसी के जहन में एक बात आए कि साहब मैं बहुत मिलना चाहता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ, उन्हें जवाब ही नहीं देते, क्या करूँ जी। मैं बार बार मिलने जाता हूँ लेकिन वो मिलते ही नहीं मेरे से, मैं जाता हूँ तो मुँह फेर लेते हैं, इस सूरत में क्या करूँ। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया और यूं इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपनी तरफ से पहल कर ले सलाम के करने में, ताल्लुक के कायम करने में, मिलने में, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, उसके बावजूद भी सामने वाला उससे मिलने को तैयार न हो, तो फरमाया कि ऐसी सूरत में सामने वाला दोनों के रिश्ते के तोड़ने का जो वबाल है वो दोनों का वबाल खुद ले जाएगा, इसके ऊपर से वो वबाल हट जाएगा। अजीब अजीब किस्से सुनने में आते हैं जी, बरसों गुजर जा रहे हैं। एक साहब एक अरसे के बाद में ताल्लुक कायम करने के वास्ते बकरीद में हिस्सा भेजे, गोश्त का कम से कम चलो इस बहाने से ही रिश्ता कायम हो जाए और ताल्लुक में उस्तवारी पैदा हो जाए, मेल मिलाप के लिए कोई राह मिलनी चाहिए, इस वास्ते एक आध साल के बाद में अपनी कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा भी जाए, तो ईद के दिन कुर्बानी का हिस्सा लेने के बजाय घर से घर में दाखिल होने से पहले ही कहा कि नहीं उनका हिस्सा हम कबूल करने को तैयार नहीं है, वापस ले जाओ। साल साल गुजर जा रहा और बात जी आपस में ताल्लुकात को उस्तवार करने के वास्ते आमादा और तैयार नहीं। हदीस में आता है कि जो मुसलमान आपस में एक दूसरे से बात बंद कर देते हों, तर के ताल्लुक कर देते हों 3 दिन तक, उसके बाद में उनकी इबादतें कबूल नहीं होती। 3 दिन तक की इजाजत दे रखी, 3 दिन तक इजाजत है कि भाई एक दिन चलो गुस्सा ठंडा करने के लिए नहीं मिल सके, दूसरे दिन चलो इशारे नाराजगी में नहीं मिल सके, लेकिन उसके बाद तो फिर मिल ही लेना चाहिए। ये कैसा गुस्सा है कि साहब 3 दिन भी हो चुके और गुस्सा है कि जाने का नाम नहीं लेता। गुस्से की भी किस्में है ना, हमारे हजरत क्या फरमाया करते थे, गुस्से को मुसलमान बनाना, अपने गुस्से को मुसलमान बनाना। हर चीज मुसलमान है जी, गुस्सा भी मुसलमान होना, पर मौजूदा सूरत हाल में तो कोई सी भी चीज मुसलमान नहीं है, मगर मैं मुसलमान बाकी हूँ। आंख मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान। कान मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान। जबान मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। हाथ मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। पांव मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान हूँ जी। दिल मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। पता नहीं ऐसा कैसा मुसलमान है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि वो शेर हो जी। कौन सा, एक आदमी ने ख्वाहिश की कि मेरे हाथ के ऊपर शेर उतार दो या पीठ के ऊपर शेर उतार दो। अब शेर उतारने के बाद से उसने सुई चुभोई, जोर से चिल्लाया, कहा कि साहब ये क्या, मैं साहब टांग बना रहा हूं। तो उसने कहा कि भाई ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता, बगैर पांवों का शेर बना दे। चलो ठीक है, बैठे हुए शक्ल का ही बना देंगे। अब उसने फिर जोर से कचोका लगाया, फिर चिल्लाया, कहने लगा साहब ये क्या दुम बना रहा हूं। बोला अरे यार जब पाँव ही नहीं है तो दुम का क्या है, बगैर दुम का ही बना दे। उसने कहा चलो बगैर दुम का ही शेर बना देंगे। उसके बाद में फिर उसने एक कचोका लगाया, फिर चिल्लाया, कहने लगा साहब ये क्या कर रहे हैं, साहब कान कान बना रहा हूं कान। फिर चिल्लाया जी, और कहने लगा कि साहब बगैर कान का ही बना दे। उसने कहा कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद में फिर उसने कचोका लगाया, वो जब फिर कचोका लगाया तो फिर चिल्लाया, कहने लगा साहब ये क्या कर रहे हैं, बोले मूछ बना रहा हूं। बोले अरे यार बगैर मूछ का ही शेर बना दे। तो वो बेजार होकर यूं बोला कि भाई बगैर आजा का शेर तो बस तुम ही बना लो, मैं तो नहीं बना सकती। बगैर आजा का शेर बन जाएगा क्या, शेर बनेगा जी? आंख मुसलमान नहीं, दिल मुसलमान नहीं, हाथ मुसलमान नहीं, पांव मुसलमान नहीं, कान मुसलमान नहीं, जबान मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान बाकी। भाई कहां का मुसलमान बाकी है समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं का मतलब भी समझ में आया नहीं आया मालूम नहीं। मुसलमान बोले तो क्या, अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने वाला मुसलमान। मुसलमान बोले तो कौन, अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने वाला। इस्लाम बोले तो क्या, अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना। अब अगर हमारी निगाह अल्लाह के हुक्म के आगे झुकी हुई नहीं है तो आंखों में इस्लाम नहीं है, जबान अल्लाह के हुक्म के आगे झुकी हुई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जबान में इस्लाम नहीं है। कान अल्लाह के हुक्म के आगे झुके हुए नहीं है, इसका मतलब ये है कि कान में इस्लाम नहीं है। अल्लाह के हुक्म के आगे झुके हुए होने नहीं होने का मफहूम भी समझ में आ रहा मालूम नहीं। जबान से सिर्फ सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के आगे झुके हुए हैं। झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी जुबान झुकी हुई नहीं है। अब इससे ज्यादा वजाहत के साथ तो बोलना बहुत मुश्किल है। तो अपने गुस्से को भी मुसलमान बनाना, तीन दिन हो जाने के बावजूद गुस्सा नहीं जा रहा। बुजुर्गों ने बताया कि गुस्से की, बल्कि हदीस में है कि एक गुस्सा वो है जो देर से आता जल्दी जाता, और एक गुस्सा वो है जो जल्दी आता देर से जाता, और एक गुस्सा वो है जो जल्दी आता जल्दी जाता। फरमाया कि सबसे बुरा गुस्सा वो है जो आता जल्दी है जाता देर से, आया जल्दी और जा रहा देर से। जैसे इस वक्त का हाल है, नाक पे गुस्सा है जिसको देखो, जरा जरा सी बात पे गुस्सा, जरा जरा सी बात पे गुस्सा है। फिर आया तो ऐसा कि तीन दिन नहीं, एक एक साल गुजर जा रहा, हिस्सा लेने को तैयार नहीं, महीने गुजर जा रहे हैं और बातचीत बंद है। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया, इस्लाम ने तो बताया कि एक दूसरे के हुकूक का पास लिहाज रखो, और ये हुक्म दो आम मुसलमानों के आपस के ताल्लुक की अहमियत की बुनियाद पर बताए गए हैं। रिश्ते का ताल्लुक तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए अगर बात बात बंद है तो वो खोल लेना। किसी के हुकूक की अदायगी में कमी कोताही हो रही है तो वो अदा करना। वक्तन फवक्तन अपने करीब और दूर के रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहने का एक निजाम बनाना। एक दूसरे के हालात से वाकिफियत रखते हुए किसको किस वक्त में किस किस्म की खिदमत की जरूरत है अदा करने की फिक्र रखना, बड़ी अहमियत है इसकी। ये तमाम मेहनतों का, तसव्वुफ की तालीम का, सबका जो खुलासा है वो भी असल में यही है कि 24 घंटे अल्लाह का ध्यान दिल में जम जाए और 24 घंटे अल्लाह के हुक्मों के दायरे में रहने की आदत हो जाए। मकसद तो ये है इसका। अब ये नहीं है अगर अपने पास में ऊंची ऊंची बातें हैं और ये नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये ऊंची ऊंची बातों से वाकिफियत हम लोगों को सूदमंद और फायदेमंद नहीं हो सकती। मोटी मोटी चीजें ध्यान में रखना, रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहना, उनके हुकूक के अदा करने का एहतमाम करना। हदीस में आता है कि कातिउर रहम जन्नत में नहीं दाखिल होगा, रिश्ते नातों का तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब ताला जल्ले शानू ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि रहम रहमान से निकाला गया है, जो इससे जुड़े रहेगा मैं उसको जोड़े रखूंगा, और जो इसको तोड़ देगा मैं उसको मुंतशिर कर दूंगा, उसको पारा पारा कर दूंगा। तो तीसरा इरशाद नबवी है सिलुल अरहाम, रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप, ताल्लुक, उनके हकूक की अदायगी का लिहाज। चौथी बात क्या फरमाई, सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, रातों में उठकर नमाजों को अदा करो। रातों में उठकर नमाजों को अदा करना ये कौन करेगा, वो जो पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वो करेगा जो पांच वक्त की नमाज के एहतमाम करता हो, उसकी वजह से अल्लाह से ताल्लुक मोहब्बत इस दर्जे उसके अंदर बढ़ गई हो कि अब उसे रात का इतना लंबा हिस्सा उससे अर्ज़ो मुनाजात के बगैर जी हजम नहीं होता, वो बेचैन होता है और परवरदिगार आलम के हुजूर अपनी जबीन नियाज को खम करता है। ये हिदायत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि रातों में उठकर नमाज अदा करो, लेकिन हमारी जो सूरत हाल है वो ये है कि वो दिन की नमाजें भी नहीं अदा हो रही। पांच वक्त की नमाज अदा करना एक मसला बना हुआ है भाइयों के लिए, बहनों के वास्ते। जितने भाई बहनें यहां हैं, पांच वक्त की नमाज एहतमाम से अल्लाह को राजी करने के वास्ते पढ़ना, बच्चों को भी आदी बनाना, और अल्लाह तौफीक दे तो आप जिस राह के मुसाफिर हैं और जिन बुजुर्गों से रब्त ताल्लुक है उसका तकाजा ये है कि फराइज व वाजिबात व सुनन के एहतमाम के साथ नवाफिल में भी अपना थोड़ा सा वक्त लगे और अल्लाह तौफीक दे तो रातों में उठकर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम। बाद रिवायतों में एक कौल और भी आया है, फरमाया लय्यिनुल कलाम, जब बात करो किसी से तो बात करना नरमी से, सख्ती से बात नहीं करना। नरमी बहुत बड़ी चीज है, राफत और रहमत बहुत बड़ी चीज है। दिल से रहम नहीं निकाला जाता सिवाय बदबख्त के, ये आया है हदीस में। जो बदबख्त होगा उसी के दिल के अंदर से नरमी और रहम निकल जाएगा। जो खुशबख्त होगा, सईद होगा, सआदतमंद होगा, उसके दिल में राफत और रहमत होगी और उसकी तबीयत में नरमी होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नरम बात करते थे। आपको मालूम है कि एक यहूदी से नबी अलैहिस्सलाम ने कर्जा लिया था, अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई मगर मांगने के वास्ते आ गया, और आने के बाद सख्ती शुरू कर दी। कहने लगा कि बस मेरा पैसा दे, देना तो देना ही, बस मैं छोड़ूंगा नहीं, जाने दूंगा नहीं, लिए बगैर हटूंगा नहीं। ये उसने आके अपना ऐलान कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि भाई जब तुमने यही फैसला कर रखा है तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाता हूं जब तक कि कोई ऐसी सबील निकल आए कि मैं तुम्हारा पैसा तुमको दे दूं। अब वो बैठ गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में बैठे हुए यहूदी के। हजरात सहाबे किराम पर बड़ा शाख गुजरा यह मसला। जुहर हुई, असर हुई, मगरिब हो गई, ईशा हो गई, दूसरे दिन की फजर हो गई, वो जाने का नाम नहीं लेता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां से हटने की कोई सूरत नहीं निकल आ रही। सहाबे किराम को बड़ा गुस्सा आया, दूर ही से वो यहूदी की तरफ इंतहाई गजबनाक निगाहों को डालते रहे और चाहते थे कि किसी तरीके से इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, और जरा सा दूर से डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम के इन तेवरों को देख कर यूं इरशाद फरमाया कि खबरदार, किसी किस्म का कोई इकदाम मत करना। ये हक वाला है, अपने हक का मुतालबा कर रहा है, उसको अपने मुतालबे का उसको अपने हक के मुतालबे का हक हासिल है, इस वास्ते तुम लोग उसके साथ में कोई गलत सलूक मत करना। सख्ती अगर थोड़ी सी जाहिर भी हो रही है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं, और खुद अपना तर्ज अमल ये कि उसके साथ में बैठे हुए हैं, जरा सा एक आंख का इशारा फरमा देते दूसरे मिनट में उसका इलाज मुकम्मल हो चुका होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब दूसरे दिन सुबह हुई और इतना लंबा चौड़ा वक्त गुजर गया तो उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मेरे पास माल बहुत है, मुझे कोई पैसों की इस वक्त में ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था और मैं हमारी किताब में लिखे हुए आपके औसाफ वाकई आप में पाए जाते हैं या नहीं ये देखना चाहता। हमारी किताबों में है कि वो सख्त जबान नहीं होंगे, जबान के एतबार से वो नरम होंगे, तबीयत के एतबार से नरमी उनके अंदर होगी, वो शोर मचाने वाले नहीं होंगे, वो गलत सलूक करने वाले नहीं होंगे, वो बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं होंगे। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ था, वो मैंने इम्तिहान ले लिया और आप उस इम्तिहान में ठीक उन बशारतों के मुताबिक निकले जो हमारी किताब में लिखी हुई हैं। अब मुझे मुकम्मल इत्मीनान हो चुका कि आप वाकईतन वही पैगंबर हैं जिस पैगंबर के तशरीफ लाने की बशारत हमारी किताबों में मौजूद है। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उसने कलिमा पढ़ा और पढ़ने के बाद में यूं कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ये माल बहुत है, आप इसे जहां जहां मुनासिब समझते हैं इस्तेमाल फरमाइए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो नरमी की ये बात सिखाई, बहनें भाइयां अपने अपने घरों में देखो अपनी अपनी जबानों का हाल कैसा है। जब जबान चलती है औरत की तो सुना है कि दिलों को टुकड़े कर देती है, और जब हाथ उठता है मर्द का तो मालूम हुआ है कि औरतों की पीठ फूट जाती है। अरे भाई ना ये सही है ना वो सही है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ तो ये सबक है नहीं। औरतों को मारने वाला बुजदिल, और वो औरत जो मर्दों को के सामने गाली गलौज करे, मर्दों के सामने आवाज को बुलंद करे, मर्दों के साथ गुस्ताखी से पेश आए और अपने शौहर की अजमत और एहतराम का पासो लिहाज न रखे, वो औरत कोई अच्छी औरत नहीं, वो बदतरीन औरतों में से। हदीस में तो आया है कि जो औरत अपने शौहर की इताअत करते करते मर जाएगी सीधा जन्नत में जाएगी, अपने शौहर की इताअत करते करते जो औरत मरेगी सीधा जन्नत में। औरत का तो ये अरबिया हो, तो नरमी हो तबीयतों में, लान तान तशनी न हो। माकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर लानत मलामत करने वाले नहीं थे। इस वास्ते ये खानदानों में लानतान की बीमारियां अक्सर खत्म हो जाएंगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बात नरम करो, और आखिर में इरशाद फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती के साथ में दाखिल हो जाएंगे। देखो छोटे छोटे से काम है, सलाम फैलाना, जरूरतमंदों की खिदमत करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, रातों में उठकर नमाज पढ़ना, जबान नरम रखना, नतीजा क्या है? सलामती के साथ जन्नत में कदम रखना, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाना। ये एक हदीस शरीफ थी जो मैंने आपको सुना दी। मैं समझता हूं कि चूंकि यहां अवाम और खवास सभी का अपराध हैं, नए भी हैं पुराने भी, बहने भी हैं और भाई भी, तो इन लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मजामीन की ज़रूरत है, तो इस किस्म के सादा अमूर की तरफ भी तवज्जो दिलाना ये ऐन मसलहत जी महसूस हुआ तो कुछ बातें अर्ज कर दी गई। हफ्ता जल्ल शानहु इल्म सही और अमल सालेह की तौफीक।